आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की 7वीं संस्करण पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के निदेशक देवेंद्र जलिहाल और मुंबई में वेलिंगकर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट नोडल केंद्र के प्रमुख नीलेश लीले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसा आयोजन रहा है जो देश में नए विचारों, नए प्रवर्तन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सुलझाने में बहुत सफल साबित हुआ है। और पिछले 6 संस्करण हमने देखे जिसमें कि युवा अपने रचनात्मक उपायों और समस्या के समाधान के जरिए नए विचार लेकर आए, और इसके बाद इन विचारों के आधार पर हमने देखा कि नए स्टार्टअप्स, नए प्रवर्तन सामने आए और इन विचारों का सरकार को भी फायदा हुआ, देश के सभी नागरिकों को फायदा हुआ। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ये 7वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड फिनाले के जो फाइनलिस्ट थे उनको संबोधित किया, उनसे बातचीत की और अपना संबोधन भी दिया। नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम अगर देखें तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने एक नींव स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि विकसित भारत के लिए इस तरह के हैकाथॉन और इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विद्यार्थी और युवा अपने विचारों से राष्ट्र महत्व के विषयों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम कार्यक्रम में आज विशेष चर्चा को कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तो सबसे पहले मैं आपसे इस आयोजन के संबंध में ही टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरह से आप इस तरह के आयोजन को देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि इस आयोजन की बदौलत देश में बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स उभर कर आए हैं, नए विचार सामने आए हैं जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम नए नए इनोवेशन देखते हैं, कामयाब नवाचार देखते हैं, जब सक्सेसफुल स्टार्टअप जब हम देखते हैं, तो उसके पीछे एक विचार होता है, एक एफर्ट होता है, उसके पीछे एक टीम होती है, उसके पीछे सरकार की सपोर्ट होती है, उसके पीछे फंडिंग होती है, और जो फाउंडर्स होते हैं उनकी मेहनत होती है। और मुझे लगता है ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का बहुत बड़ा रोल रहा है। शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि देश के बहुत सारे कामयाब स्टार्टअप्स, भले ही वो बड़े बने हो या नहीं बने हो, पर बड़े बनने की राह पर हैं, उसके पीछे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसा एफर्ट, जैसा इनिशिएटिव सरकार ने जो लिया है, काफी हद तक वो उसके पीछे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। क्योंकि अगर आप जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी उनकी बड़ी लंबी फेरिस्ट है, आप देखेंगे तो उन टीम्स में आपको पता लगेगा कि आप मिनिस्ट्रीज से हैं, अलग अलग कॉरपोरेट से लोग हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कि आप उसको देश के वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, देश के नवाचार को हम स्टार्टअप इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें आपको एक नई चीज लेकर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। और मैं ये भी चाहूंगा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, कि आने वाले समय में जो भी स्टार्टअप्स निकल कर आए तो वो अपने पीछे जब वो अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो मुझे लगता है उनको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उसमें अब जिक्र करना चाहिए। और इसी तरह से मैं ये भी चाहूंगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी आगे उसको फॉलो अप करके कि कौन कौन से स्टार्टअप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बदौलत, उसके कारण या उस इनिशिएटिव से जुड़े हैं और उसकी वजह से आज वो कामयाब हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही एंड से अगर ये डेटा भी निकल के आता रहेगा तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में इसमें पार्टिसिपेशन और बढ़ती हुई दिखाई देगी।
बिल्कुल। हमारे साथ अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हो चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा नीलेश लेले जी का, जो मुंबई में नोडल केंद्र को हेड कर रहे हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के। नीलेश जी, आपका भी स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 51 नोडल केंद्र बनाए गए हैं, तो आपके नोडल केंद्र में किस तरह से इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लिया जा रहा है और कितने युवा इसमें प्रतिभागी बने हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के सोल्यूशन इन युवाओं ने पेश किए हैं, आप इस बारे में बताएं।
जी जरूर। 51 नोडल सेंटर्स में सब मिला के 250 से ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। उसमें से एक जहां मैं हूँ, वेलिंगकर इंस्टीट्यूट मुंबई, जहां पे 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं। वो 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे 34 अलग अलग टीम्स, ऑन एन एवरेज 5 से 7 टीम्स हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के यहाँ ग्रैंड फिनाले में आए हुए हैं, जिसमें सब मिला के 34 टीम्स बनते हैं। ऑन एन एवरेज अगेन 6 से 7 मेंटोर को पकड़ के 7 लोग हैं। सो 200 से अधिक बच्चे आज इस वेलिंगकर इंस्टीट्यूट में मौजूद है, और 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है काफी सारे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं बताता हूँ कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर, कि लोगों के चेहरे से आप उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड कोई अगर मिसबिहेव करने वाला है या कुछ अलग किस्म से बिहेव करने वाला है, उस किस्म का पहले ही वो इंसान को आप ट्रैक कर सकते हो और पहचान सकते हो कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। एक उदाहरण हो गया जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ 5 से 6 टीम्स उस पे काम कर रहे हैं।
जिस तरह से आपने बताया कि विमेन सेफ्टी से लेकर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इसमें रखा गया है जिसका समाधान निकालने की कोशिश की, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, संक्षेप में बताएं कि विद्यार्थियों का उत्साह कैसा था और इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुलझाने को लेकर वो किस तरह से मेहनत से काम कर रहे हैं।
विद्यार्थी तो बहुत उत्साहित है, खास करके जो मुंबई के बाहर है उनको मुंबई आने को मौका मिला है। जनरली ये वंस इन अ लाइफ टाइम हम कह सकते हैं, और एक दो चीज वंस इन अ लाइफ टाइम हुए यहाँ पे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 5 टीम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइव इंटरेक्शन खत्म हुई है 4:30 से 5:30, और उसमें से जो एक टीम थी वो यहाँ वेलिंगकर में ही वो टीम अपना काम कर रही है, और वो जो टीम काम कर रही है वो ड्रोन सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। अगर आप देखें आसमान में तो ये ड्रोन है या ये पक्षी है, बर्ड है, ये डिटेक्ट करना कई बार जो ड्रोन डिटेक्टर्स होते हैं उनको मुश्किल होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है कि जहां पे जैसे उन्होंने भी कहा कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का एक डॉपलर इफेक्ट से अलग रिजल्ट्स आता है, तो उसके बेसिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वो पक्षी या पंछी या बर्ड है या ये वो सचमुच ही ड्रोन है। तो ऐसे काफी सारे जो रियल लाइफ जो हमारे निजी जिंदगी में दिनचर्या में डे टू डे लाइफ में कुछ हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं वही ये प्रॉब्लम्स मिनिस्ट्रीज ने दिए हुए हैं और उनके ऊपर ही ये बच्चे बहुत मेहनत लेके काफी इंटरेस्ट से इस पे सॉल्यूशंस इन लोग खोज रहे हैं।
अब हम चलते हैं प्रोफेसर देवेंद्र जरिहाल के पास जो IIT गुवाहाटी के प्रमुख हैं। बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार
देवेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि IIT गुवाहाटी जो एक नोडल केंद्र बना है इसकी क्या भूमिका इस बार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में देखी जा रही है, और हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको युवा सुलझा रहे हैं, तो वहाँ क्या कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर काम हो रहा है और किन चीजों पर फोकस है और युवा किस उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं?
यहाँ 20 टीम्स आए हैं, वो 20 टीम्स तो महाराष्ट्र से, गुजरात से, तेलंगाना से, बाहर से ही आए हैं। 20 टीम्स आए हैं, एक एक टीम में 6-6 स्टूडेंट्स है और हर एक टीम में एक गर्ल स्टूडेंट को भी रहना जरूरी है, और एक टीम तो सारे गर्ल्स टीम ही है। 120 लड़के हमारे यहाँ आए हैं और 36 घंटे का हैकाथॉन है, सॉफ्टवेयर हैकाथॉन, वो शुरू हो गया है, कल शाम तक खत्म हो जाएगा।
जी, अब हम शरद जी आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक संवाद सुनवाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से अपने संबोधन में कई युवाओं से संवाद भी किया, उनके इनोवेशन के बारे में जाना, तो NIT श्रीनगर के नोडल केंद्र के जो विद्यार्थी हैं, जो वहां की टीम थी, वहां के विद्यार्थियों ने एक रोचक नवाचार प्रस्तुत किया है जो ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग हैं उनको लेकर वर्चुअल रियलिटी फ्रेंड का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे कि वो उनकी सीखने सिखाने की लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए सीखकर समाज में अपना एक बराबरी का स्थान हासिल कर सकें। तो आइए हम इस संवाद का एक अंश आपको सुनवाते हैं।
नमस्ते जी।
नमस्ते सर, आई एम साइदा ऑफ टीम बिग ब्रेन्स पार्टिसिपेटिंग इन SIH, वी आर फ्रॉम कर्नाटका बेंगलुरु। सर, हम नोडल सेंटर NIT श्रीनगर में है, वी आर पार्टिसिपेटिंग अंडर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जहां पे वी आर बिल्डिंग अ वर्चुअल रियलिटी फ्रेंड फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पे दे विल बी यूजिंग दिस एज एन इंटरक्टिव स्किल्स एनहांसर। हमारे देश में देर आर अराउंड 18 million पीपल ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, एंड देर इज 1 child आउट ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन हु फेसेस इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए विल बी बिल्डिंग अ टूल विच विल एक्ट लाइक अ दोस्त दैट दे कैन कैरी ऑन देयर स्मार्टफोन्स। वर्चुअल रियलिटी यूज करने के लिए उनको कोई स्पेशल सेट की जरूरत नहीं होगी, दे कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर फोन्स या लैपटॉप्स या जो भी डिवाइस है उनके पास, एंड ये एक ऐसा दोस्त होगा जो उनको उनकी हर टास्क में गाइड करेगा। इट इज एन AI पावर्ड वर्चुअल रियलिटी सोल्यूशन। तो जैसे कोई दिनचर्या का काम हो गया जो उनसे नहीं हो पाता, दे फेस चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज या लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, तो हर टास्क के लिए इट बी ब्रोकन डाउन इनटू छोटे छोटे।
आप जो काम कर रहे हैं, इससे इन बच्चों की सोशल लाइफ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा?
वो इस दोस्त की मदद से सीख पाएंगे कि सोशल इंटरेक्शंस में क्या सही है, क्या गलत है और कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट में सीख के आगे जाके वो अपने रियल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे दे कैन हेल्प मेक देयर लाइव्स बेटर बाय बीइंग एबल टू डू नॉर्मल थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग देम दिस ताकि देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉर्मल पीपल एंड देयर नॉर्मल लाइव्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैरिंग ऑन नॉर्मल एक्टिविटीज इन देयर डेली वर्क।
तो शरद जी, हमने जैसा कि देखा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिनका समाधान युवा तलाश रहे हैं, उसमें जहां एक तरफ इसरो की जो तस्वीरें हैं, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें हैं, उनको समझने की, उनका आकलन करने की कोशिश है, जिसमें जो वहां की जियोलॉजिकल स्थिति है उसको समझने का प्रयास है। दूसरी तरफ ऐसे प्रयास भी हैं जैसा कि अभी हमने सुना कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त बच्चे हैं, उनके लिए भी सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे समाधान युवाओं की सोच के जरिए सामने आते हैं तो किस तरह से जो समस्या है उनके समाधानों की ओर हम नए विचारों को आता हुआ देखते हैं?
बिल्कुल कमल, ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही अनूठा प्रयास है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको दोनों तरफ फायदा हो रहा है। एक तरफ मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित देश को कोई सोल्यूशन चाहिए, हालांकि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उदाहरण के तौर पे चलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में चला जाता हूँ, बड़े बड़े वहां पर पुराने लोग काम करते हैं, पर फिर भी क्या होता है कई दफे युवा ऐसा आइडिया निकाल के लाते हैं जो एकदम से आदमी चौंक जाता है, अरे ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया या हम क्यों नहीं इसको कर पाए। तो मुझे लगता है जब भी कोई नया उसके पीछे विचार आता है, नई शक्ति आती है, तो उसमें नई चीजें निकल के आती हैं, वही इसका लक्ष्य है। और देखिए कमल, इसमें जो मैं देख रहा था इसके फायदे, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और ये जो NIT कश्मीर से बोल रही थी, बता रही थी, वो उन्होंने दोस्त निकाला है जो कि आपके लैपटॉप पे मोबाइल पर एक तरह से काम करेगा ऑटिज्म के लिए, और दूसरी तरफ फेस रिकग्निशन की बात थी, आपने स्पेस की बात करी, मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम रह जाए जिसका हल नहीं निकल पाए। और फायदे क्या होने वाले हैं, मैं तो इसके फायदे सोच सोच के हैरान हो रहा हूं कि ये स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। देखिए अगर आप युवाओं की स्किल की बात करें, हम कौशल विकास की देश में बात करते हैं, मुझे लगता है ये एक नेचुरल तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। दूसरा, असली जिंदगी में जो आपकी समस्याएं आती थी कॉलेज में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो आपको एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, मतलब वहां पर एक समस्या को कल्पना करके दी जाती है कि मान लीजिए ये प्रॉब्लम है तो आप क्या सॉल्व करेंगे, और एक होता है कि असल जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है असल जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, और जो करने वाला है उसको खुशी होती है कि मैंने वाकई में कुछ लोगों की समस्या का, किसी मंत्रालय की समस्या का, देश की समस्या का मैंने समाधान निकाला, इनोवेशन आ रही है। अच्छा, इसमें एक और मुझे फायदा दिख रहा है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को, नवाचार को जन्म दे रहा है, क्योंकि जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं आगे इसको लेके वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। अच्छा, ये टीम्स अभी बता रहे थे हमारे जो मुंबई से जुड़े थे और गुवाहाटी से जुड़े थे, वो कह रहे थे 120 लोग आए हुए हैं, ये लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इनको नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है। एक नवाचार जब दूसरे नवाचार से मिलता है, एक आइडिया दूसरे आइडिया से मिलता है, तो एक तीसरा आइडिया निकल के आ जाता है। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मुझे इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है। अच्छा, जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और जो रिकॉग्निशन मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के हाथ से, मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोत्साहन नहीं हो सकता। उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन जो मिल रहा है, इन लोगों का करियर को आगे बूस्ट मिल रहा है। मैं तो फायदे गिनवा रहा था, तो फायदे इतने हैं, नेशन बिल्डिंग में ये मदद कर रहा है और स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारे मुंबई के लेले साहब बता रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म पे शायद एक स्टूडेंट के लिए पहुंच पाना कठिन था, जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार द्वारा इनिशिएटेड है, और ऐसी टीम में आप जाके मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक और इसमें बहुत बड़ा फायदा मुझे नजर आ रहा है कमल, जो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, कि ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को जन्म देगा। मतलब ये नवाचार आज भारत में अपना नाम करेंगे, भारत के लिए समस्या का समाधान निकालेंगे, कल को ये वैश्विक समस्याओं का भी समाधान निकाल सकते हैं। मुझे लगता है इनके सामने, क्योंकि भारतीय नवाचार की दुनिया भर में आज चर्चा हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कमल, इनमें से ये आज प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कल को ये अमेरिका की, जर्मनी की, फ्रांस की और पूरे विश्व की कल को प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाए। तो मुझे लगता है इसमें अपॉर्चुनिटीज अनगिनत है, इसमें संभावनाएं बिल्कुल आप गिन नहीं सकते। जितनी मैं इसकी तारीफ करूं कमल, मुझे कम नजर आ रही, क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, एक नवाचार का मेंटोर हूं, 200-300 नवाचारों को मैं मेंटोर करता हूं। तो मुझे लग रहा है इससे बढ़िया इनिशिएटिव हो नहीं सकता, और इसके लाभ जो है आपको आने वाले सालों में दिखाई देंगे, एकदम तो दिखेंगे पर आपको आने वाले सालों में इसके लाभ मल्टीप्लाई होते दिखाई देंगे।
हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर चिंतन वैष्णव। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे आयोजन किस तरह से देश में नवाचार की एक पूरी संस्कृति को पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और जिस तरह से युवा अपने नए विचारों के साथ, नए उपायों के साथ सामने आ रहे हैं, किस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा, आपसे हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में इस मिशन का भी जिक्र किया, और जिस तरह से अटल इनोवेशन मिशन के जरिए देश में इनोवेशन का एक वातावरण बना है उसके बारे में उन्होंने कहा, तो इस मिशन से किस तरह से देश में नवाचार को नया रूप देने में मदद मिली है, इस बारे में भी आप हमें बताएं।
स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भारत का सबसे बड़ा हैकेथॉन है आज की तारीख में। लेकिन ये जो हैकेथॉन की बात चल पड़ी है, जो भारत में ऑन एवरेज हर दिन कहीं ना कहीं एक हैकेथॉन हो रहा है, आप मान सकते हैं, क्योंकि 365 से ज्यादा हैकेथॉन एक साल में छोटे बड़े हर जगह हो रहे हैं, तो इनकी भूमिका बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जब तक बात आती है तो इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन के एनालिसिस के मुताबिक एटलीस्ट 20% प्रॉब्लम्स जो यूथ और बच्चे इन हैकेथॉन्स में जिसको सॉल्व करना तय करते हैं, ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हाइपर लोकल प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसके बारे में बाकी के देश को पता भी नहीं कि ये प्रॉब्लम है। जैसे हिमालयन रीजन में कार्बन मोनोक्साइड से सर्दियों के मौसम में साइलेंट डेथ हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि बाकी का देश सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हैकेथॉन की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि एक छोटे समय में आप एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लो और उसके बारे में क्रिएटिवली सोचो और कुछ ना कुछ उसका हल निकालो। आपने दूसरी बात कही अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन तीन चीजें करता है। एक तो कि भारत की इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़े, दूसरा जो लोग जुड़ते हैं वो सफल कैसे हों इन इकोसिस्टम में, और तीसरा जब वो कुछ स्टार्टअप्स बनाते हैं जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे ज्यादा उचित हो। तो ये करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने कई इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, जैसे स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स जो 10,000 से ज्यादा हैं, कॉलेजों और इंडस्ट्री में इंक्यूबेशन सेंटर्स, कम्युनिटीज में कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म, स्टेट के साथ मिलकर स्टेट इनोवेशन मिशन, और इंडस्ट्री के साथ मिलके इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर जैसी चीजें जो अभी भविष्य में आ रही हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अटल इनोवेशन मिशन ऐसी टेम्पलेट्स बनाता है जो देश भर में लोग उसका उपयोग करके अपनी अपनी इकोसिस्टम्स बना पाए।
सीधे चलते हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बीजे राव से आकाशवाणी संवाददाता ने बात की, और उन्होंने बताया कि कई मुद्दों का समाधान तलाशने में किस तरह से वहां के केंद्र पर काम हो रहा है, आइए सुनते हैं।
हम आज यहाँ वर्धमान कॉलेज में उपस्थित हैं। 7वां एडिशन इंडिया हैकाथॉन चल रहा है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, और यहाँ बहुत से संख्या में युवक लोग आए हैं, युवक और युवती लोग, देश की समस्याओं को अच्छे ढंग से सोच के और उसका समाधान निकालने का एक यज्ञ है जो आज और कल दो दिन चलेगा, और इस यज्ञ में समस्याओं का समाधान निकलेगा, और जब समाधान निकलेगा तो समाज के लिए इससे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये सब समस्याएं सामाजिक परिस्थितियों से और प्रजा के संबंध में है, जैसे उनकी जीवन धारा को कैसे हम सरल करें, उनको टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचाया जाए, और साफ पानी, साफ हवा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम कैसे अचीव करें, ये सब समस्याओं का समाधान यहाँ हैकाथॉन में मिलेगा, और इससे विकसित भारत होने का बहुत बड़ा सोपान हमको दिखेगा। तो अगर कुछ अंग्रेजी में कहूं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री नाउ, 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बीइंग हेल्ड इन वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज, टू हैड दिस ओकेशन टू होल्ड दिस इंपॉर्टेंट टुडे इवेंट वेयर लार्ज नंबर ऑफ यंग स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स हैव कम टुगेदर टू डिस्कस अबाउट मिशन स्टेटमेंट्स वेयर प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड, डाइसेक्टेड, एक्सप्लोर्ड, और उसका समाधान सॉल्यूशंस आर एक्सप्लोर्ड, सॉल्यूशंस आर डिस्कवर्ड, और जब सॉल्यूशंस आर डिस्कवर्ड दे कैन एक्चुअली बिकम इम्पॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट्स फॉर द कंट्री एंड बिकम स्टार्टअप्स। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड wealth generation for the country. Solutions will generate wealth for the country. And unless we generate wealth and very, very strong employment opportunities through societal solutions, we will not be able to move further. Therefore, this is a very important required step for us to grow further economically, politically and socially, as well as culturally.
तो इनके आखिरी कथन से ही मैं सवाल पर आऊंगा शरद जी. जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर सॉल्यूशंस आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, तो वेल्थ जनरेट हो सकती है और देश को विकसित बनाने में इससे मदद मिल सकती है और एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. तो जब हमें इसके कई गुना फायदे हैं, तो हमें किस तरह से इस तरह के हैकाथॉन्स को देखना चाहिए जिसमें नए युवा विचार सामने आते हैं और न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं, बल्कि देश के बड़े मुद्दों के लिए, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कृषि का मुद्दा हो, जल संरक्षण का, जल संसाधन का मुद्दा हो, उनमें समाधान हमें देखने को मिलते हैं. तो किस तरह से देश की आर्थिक तरक्की के लिहाज से ये अहम है?
बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करता है देश की आर्थिक प्रगति में. आप देख रहे हैं कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न्स बनते हैं, जिनको हम 1 बिलियन, आप तो डेकाथॉन्स की बात हो रही है, 1 बिलियन 10 बिलियन डॉलर तक के बन रहे हैं. वो वेल्थ क्रिएशन जो हो रहा है वो उसकी संभावना है, जैसे कि मैंने कहा, अनगिनत है. और मैं एक और इसमें सलाह भी देना चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से कि इसके बाद जिसको हम फॉलो अप सिस्टम कहते हैं, फॉलो अप सिस्टम को जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि बाद में इसमें से कितने जो सॉल्यूशंस निकल के आए, कितने वो कमर्शियली कन्वर्ट हो गए. कमर्शियल कन्वर्ट से मेरा मतलब है कि कितने वो स्टार्टअप हो गए, उनको रेवेन्यू आना शुरू हो गया, उनको फंडिंग मिल गई, पहला. दूसरा ये भी इसमें महत्वपूर्ण है कि वो लोग क्या वो सॉल्यूशन उस मिनिस्ट्री के या वो भारत सरकार के या भारत सरकार के उस उपक्रम के वो काम आया, और काम आया तो उसका लाभ क्या हुआ. मुझे लगता है अगर ये सब डेटा भी सार्वजनिक कर दिया जाए तो उससे आगे आगे जो हैकेथॉन्स हमारे होंगे वो उसमें और ज्यादा आपको पार्टिसिपेशन होता दिखाई देगा और देश को इस हैकेथॉन का महत्व भी समझ में आएगा और मैं समझता हूँ ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे.
आपने बिल्कुल ठीक कहा और इस बात का प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में आज जिक्र किया था कि जैसे उन्होंने 2017 के हैकेथॉन का जिक्र किया जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में विचारों के साथ युवा सामने आए, और 2-3 स्टार्टअप्स का उन्होंने जिक्र किया जो सफलतापूर्वक इस हैकेथॉन की ही देन है, जैसे रियल टाइम ब्लड मैनेजमेंट, जिसमें कि आपदा के समय अगर ब्लड की जरूरत होती है तो उस वक्त इस ब्लड बैंक के मैनेजमेंट सिस्टम से इस आपातकालीन स्थिति में ब्लड उपलब्ध करवाया जा सकता है. इसी तरह से इन्होंने जियो टैगिंग ऐप का भी जिक्र किया था, इस उपाय से किस तरह से हम तकनीकी रूप से जो जियो लोकेशंस हैं और उनके मामले में समाधान निकालने में सफल हो पाए हैं, और जो खासतौर पर सरकार के स्तर पर इससे बहुत फायदा मिला है, ऐसा उन्होंने कहा. ऐसे समाधान स्टार्टअप्स में तब्दील होते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कि युवाओं को और प्रेरणा मिलेगी और बड़ी संख्या में युवा सामने आकर और नई चीजों पर काम करेंगे.
जी हाँ, बिल्कुल. आज का जो युवा है वो, जैसा कि सरकार ने भी कहा था कि नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी ढूंढने वाले, तो मुझे लग रहा है युवा जितना टाइम नौकरी ढूंढने में लगाते हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो आइडियाज हैं, उनके अंदर जो स्टार्टअप करने का जुनून है, अगर वो उस एनर्जी को ठीक चैनल मिल जाता है, यानी कि उसको ठीक रास्ता मिल जाता है, तो मुझे लगता है उनका विचार, उनकी इनोवेशन, उनका सारा का सारा जुनून वो ऐसी तरफ लगेगा जो कि उसको इधर उधर भटकने से भी बचेंगे और कल को रोजगार देने वाले बन जाएंगे, रोजगार देने वाले बन जाएंगे. नेटवर्क आप देखिए, आज मैं एक दो यहां पर स्टार्टअप का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर कुछ स्टार्टअप इस समय देश के सबसे अमीर स्टार्टअप में, वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, उसमें बन चुके हैं और उनको बड़ी अच्छी फंडिंग मिल रही है, विदेशी सोर्सेज से उनको फंडिंग आ रही है, उनके आइडियाज को रेप्लिकेट किया जा रहा है, उनके आइडियाज को दूसरे देशों में लगाया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि भारतीय युवा में संभावनाएं इतनी है और उनकी बुद्धि इतनी तेज है. हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर बार बार बात की जाती है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि यही वो युवा हैं जिनके ऊपर बात की जाती है, यही वो युवा हैं जो आज देश के सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बना रहे हैं. और एक बात मैं कमल यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि स्टार्टअप नवाचार सिस्टम के बारे में बात कही जाती है कि साहब 80-90% फेल हो जाते हैं, कोई कहता 75% फेल हो जाते हैं. तो मेरा ये मानना है कि ये जो इनिशिएटिव है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर ये जो फेलियर रेट है स्टार्टअप का, ये भी उससे कम होता है, क्योंकि आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको नवाचार शुरू करने से पहले मौका मिलता है. तो आपको एक तरह से लैबोरेटरी मिल गई जहां पर आप अपने एक्सपेरिमेंट को पहले कर सकते हैं, और जब आप देखेंगे कि आपके सोल्यूशन को तो किसी मंत्रालय ने या राष्ट्रीय स्तर पर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो फेलियर के चांसेस जो होते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो भी कम हो जाएंगे. ये एक और इसका फायदा निकल के आएगा. और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि जितने स्टार्टअप स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से पिछले चंद वर्षों में जुड़े हैं, उनकी अगर हम सक्सेस रेट निकाल के देखें, आप देखेंगे कि उनका सक्सेस रेट कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनको सरकार द्वारा भी एक तरह से उनके, मैं कहूं कि सीवी में, उनके बायोडेटा में, उनके रिज्यूमे में, उनके प्रोफाइल में, और यहां पर हम कंपनी का बैकग्राउंड कहते हैं, नवाचार का बैकग्राउंड, उसमें जुड़ जाता है कि इस नवाचार ने पहले एक सरकारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी, एक सार्वजनिक प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी, एक कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी, देश की प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी। तो मैं समझता हूं ऐसे में उनको फंडिंग मिलने में आसानी हो जाती है, उनको नौकरी पे स्किल ढूंढने में आसानी हो जाती है, और उनकी ग्रोथ जो है बाकी स्टार्टअप्स के मुकाबले तेज हो जाती है।
तो नीलेश जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगा, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि युवा अपने इनोवेटिव आइडियाज से एक नए और विकसित भारत की तरफ जो रास्ता है उसको तैयार करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के कॉन्सेप्ट से आपको क्या लगता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि सरकारें दे रही हैं, संस्थान दे रहे हैं और विभाग दे रहे हैं, उनको सॉल्व करके विद्यार्थी अपने जो रोचक आइडियाज हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि आप उस प्रोसेस में अभी हैं और विद्यार्थियों से लगातार आपका संवाद भी हो रहा होगा, तो उनके मन में जो समस्या का समाधान निकालने को लेकर एक पूरा उनके अंदर उत्साह है, तो वो कितने तत्पर हैं देश में समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए।
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कई बार बाकी दुनिया से अलग होते हैं, तो हमारी मिनिस्ट्री वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है, जैसे फॉर एग्जांपल आयुष मिनिस्ट्री है जो आयुर्वेदिक के लिए हमने बनाई है, तो वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दुनिया भर में अवेलेबल नहीं होते। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि आप एक ऐप बनाओ जो औषधि है, जो वनस्पति है, उसको आप स्कैन करो और वो ऐप आपको बता दे कि ये औषधि वनस्पति क्या है। तो ऐसे लास्ट अभी 7 सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से, मैंने देखा है कि कैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बिकॉज ये वो हमारे लिए यूनिक है, हमारे देश के लिए यूनिक है, और साथ साथ हमारी जो ब्रेन पावर है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, वो भी यूनिक है। सो रादर देन दुनिया के लिए या दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो अगर भारत के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारे देश के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्हें ज्यादा रुचि, ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, एंड वही देखने को मिला है कि हर साल आप ज्यादा नंबर स्टूडेंट्स देखते हैं, ज्यादा आइडियाज आप देखते हैं, और ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखते हैं इन स्टूडेंट्स में, बिकॉज वो जो प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं उनके डे टू डे लाइफ में उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और उसके वजह से वो ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं।
प्रोफेसर देवेंद्र, आपका भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि आने वाले समय को लेकर जब हम विकसित भारत की, डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी आज अपने संबोधन में जोर दिया, तो उसमें विद्यार्थियों की किस तरह की भूमिका को आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी युवा संख्या है, बहुत बड़ा यूथ है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर उनके क्षमता को, उनकी कैपेबिलिटीज को हम पूरी तरह से उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए किया भी जा रहा है, तो हम बहुत सारी समस्याओं को दूर करके हम समाधान निकाल सकते हैं और अपने देश को विकसित बना सकते हैं।
हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये सबको पता है, लेकिन ये जो स्मार्ट हैकाथॉन का जो आइडिया है वो प्रॉब्लम रिच जोन से सॉल्यूशन रिच सिचुएशन तक हम जा रहे हैं, तो हर प्रॉब्लम का बहुत सारे हल होंगे, तो यहाँ इतने सारे युवा लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, तो इसमें कोई ना कोई सक्सेसफुल होगा ही, तो ये सॉल्यूशन रिच रेजिम में जो हम जा रहे हैं इससे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हम बैठे बैठे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से कुछ होगा नहीं, ये सब छोड़कर ये युवा लोग आए हैं, हम इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सोचकर, ये बहुत बड़ी बदलाव की विचार है, तो इसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, और लोगों के मन में ये भी आएगा कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज भी होगा, तो ये बहुत पॉजिटिव विचार है।
जी बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव विचार है, और इसी बात के साथ हम कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को न सिर्फ इस चर्चा के माध्यम से जानकारी मिली होगी, बल्कि बहुत सारे युवा जो सुन रहे हैं उनको भी एक प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह से इनोवेशन और नवाचार से भारत को बदला जा सकता है, विकसित भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं, और अपना बहुत इसमें योगदान दे सकते हैं अपने नए विचारों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
धन्यवाद, थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की 7वीं संस्करण पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के निदेशक देवेंद्र जलिहाल, और मुंबई में वेलिंगकर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट नोडल केंद्र के प्रमुख नीलेश लीले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।